डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 24। प्रकाशित वाक्य 18:09 से 19:10, विलाप और आनंद समाप्त। बेबीलोन का पतन 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 24, प्रकाशित वाक्य अध्याय 18:09 से 19:10, बेबीलोन के पतन पर विलाप और खुशी है। अध्याय 18 के छंद 9 से 19 में हमने कहा कि हम विलाप और मातम को यहेजकेल अध्याय 27 में सोर के पतन के जवाब में दिए गए शोक और विलाप के समान पाते हैं। अब हम उन लोगों के शोक और विलाप को पाते हैं जिन्होंने रोम के साथ सहयोग किया और जिन्होंने इसकी संपत्ति और इसकी आर्थिक प्रणाली में भाग लिया और अब पतन के कारण शोक मना रहे हैं, जिसका अर्थ है, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, उनकी मृत्यु और इसका अर्थ है कि उनका स्रोत धन की कटौती हो गई है। इसलिए वे अपने पाप के कारण शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि रोम के पतन के कारण शोक मनाते हैं और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम पाते हैं कि अध्याय 18 छंद 9 से 19 तक विलाप और मातम को तीन अलग अलग समूहों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पहला समूह श्लोक 9 और 10 में पृथ्वी के राजाओं का विलाप होगा। दूसरा समूह श्लोक 11 से 17 में व्यापारियों का विलाप होगा। और फिर अंत में वह समूह जो ईजेकील में टायर दैवज्ञ पर हावी था। 27 जहाज व्यक्तियों या उन लोगों का समूह है जो जहाज के मालिक हैं और शिपिंग उद्योग के माध्यम से व्यापार में शामिल हैं। आप श्लोक 17 से 19 में उनका विलाप अंतिम समूह के रूप में पाएंगे। और आप यह भी देखेंगे कि अंतिम समूह में वे किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक तरह से चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। लेकिन श्लोक 9 और 10 से शुरू करते हुए पृथ्वी के राजाओं का विलाप और इस खंड में उनके विलाप करने के दो कारण नंबर एक हैं, उन्होंने बेबीलोन रोम के साथ व्यभिचार किया है और हम पहले ही देख चुके हैं कि यह शारीरिक व्यभिचार नहीं है, हालांकि कुछ टिप्पणियां इसे इसी तरह लेती हैं। यह शायद शारीरिक व्यभिचार नहीं है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें इसे उसकी संपत्ति और उसकी मूर्ति पूजा में भाग लेने के संदर्भ में समझना था। हमने देखा है कि रोम एक वेश्या के रूप में अन्य राष्ट्रों को अपनी आर्थिक प्रथाओं में शामिल करके उनके साथ व्यभिचार करवाती थी, जहां वे अत्यधिक धनवान बन जाते थे और धन के लिए अपने उपभोग का आनंद लेते थे, और रोम के साथ संबंध के कारण उन्होंने अत्यधिक धन का आनंद लिया। यह दूसरा कारण है कि वे विलासिता में रहते हैं। वे रोम की संपत्ति से अमीर बन गए और अब वे शोक मना रहे हैं क्योंकि रोम में भगवान के फैसले के कारण आपूर्ति बंद हो गई है। तथ्य यह है कि वे दूर खड़े हैं, संभवतः रोम पर आने वाले फैसले से बचने की उनकी इच्छा का सुझाव देते हैं। यह भी ध्यान दें कि वे संकट के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे हम पहले ही अध्याय 8 के अंत में तुरही निर्णय के साथ देख चुके हैं। अंतिम तीन तुरही निर्णय की शुरुआत में उन्हें संकट कहा गया था। संकट उस न्याय के कारण प्रकट होते हैं जो आने वाला है या जो किसी राष्ट्र पर आने वाला है। तो यह शोक उस फैसले के कारण शोक का शब्द है जो अब रोम के बेबीलोन शहर पर आया है। तो ये हैं पृथ्वी के राजा। पृथ्वी के राजा वे हैं जो रोम की संपत्ति से अत्यधिक धनवान हो गए हैं। वे वही हैं जो अध्याय 7 से भाषा सीख रहे हैं। उन्होंने वेश्या के साथ व्यभिचार किया है और अब वे उसके फैसले के सामने शोक मना रहे हैं। श्लोक 11 से 17 में हमें दूसरे समूह व्यापारियों के विलाप से परिचित कराया जाता है। और शायद यहाँ लेखक विशेष रूप से ईजेकील अध्याय 27 पर निर्भर है जो श्लोक 27 में है, लेकिन 30 से 32 तक भी हमने कहा कि ईजेकील 27 उन लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला विलाप है जिन्होंने शिपिंग उद्योग में वाणिज्य किया था, जो अब पतन के कारण शोक मना रहे हैं। और सोर नगर पर न्याय। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि अध्याय 27 और श्लोक 27 में वह आपके धन माल और माल, आपके नाविकों नाविकों और जहाज मालिकों, आपके व्यापारियों और आपके सभी सैनिकों और जहाज पर मौजूद सभी लोगों का वर्णन करता है। और फिर 30 से 33 तक भी वे अपनी आवाज उठाएंगे और फूट फूट कर चिल्लाएंगे। वे तुम्हारे कारण अपना सिर मुंडवाएंगे। वे टाट ओढ़ेंगे और तुम्हारे लिए दुहक और घोर विलाप के साथ रोएंगे और तुम्हारे लिए छाती पीटेंगे। वे तुम्हारे विषय में विलाप करेंगे। समुद्र से घिरा हुआ सोर की तरह कौन कभी चुप रहा है? जब तेरा माल समुद्र में जाता था, तब तूने बहुत सी जातियों को अपनी बड़ी संपत्ति और माल से तृप्त किया। तूने प्रियवी के राजाओं को धनी किया। तो ध्यान दें कि वहां भी आपके पास तीन समूह हैं, हालांकि वे प्रकाशित वाक्य की तरह अलग नहीं हैं, और आपके पास पृथ्वी के राजा हैं। आपके पास व्यापारी भी हैं। और फिर अंततः आपके पास जहाज के मालिक और शिपिंग उद्योग से जुड़े लोग हैं। और वे तीनों अब प्रकाशित वाक्य 18 में शोक मनाने वाले तीन समूहों के लिए मॉडल प्रदान करते हैं। और इसलिए अब हम व्यापारियों को इजेकील 27 पर आधारित परिचय दे रहे हैं और श्लोक 11 से 17 में उनके शोक का कारण समान है, और वह यह है कि उनकी स्वार्थ प्राप्ति और धन के प्रति उनकी स्वार्थी लालसा अब कट गई है, क्योंकि उनके धन का स्रोत जो रोम के साथ व्यापार था, रोम के विनाश के कारण अब बंद हो गया है। कार्गो की सूची नोट करें, और यह यहाँ दिलचस्प है। यह एकमात्र स्थान है जहाँ जॉन ने विलासिता की एक विस्तृत सूची बनाई है, जिसमें पुराने नियम की पृष्ठभूमि भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जॉन ने इसे रोम में आयात किए जाने वाले सटीक माल और कार्गो के लिए भी तैयार किया है। और अब तस्वीर उन व्यापारियों की है जिन्होंने रोम में इन विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयात में भाग लेकर खुद को अमीर बना लिया है। इनमें से कई चीजें विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं जो केवल अमीरों द्वारा ही उपलब्ध होती थीं और उन्हें वहन किया जा सकता था। इनमें से कुछ जैसे गेहूं और अनाज सभी के उपभोग के लिए मुख्य सामग्री रहे होंगे। लेकिन अध्याय 6 में हमने देखा कि रोम के इतिहास में कई बार वह भी सामान्य व्यक्ति और यहाँ तक कि गरीब लोगों के लिए भी अप्राप्य रहा होगा, और इसकी बढ़ी हुई कीमत पर यह केवल अमीरों के लिए ही वहनीय होता। लेकिन कार्गो की यह सूची बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि श्लोक 12 और 13 में माल की यह सूची एक और संकेत है कि जॉन बेबीलोन को मुख्य रूप से रोम शहर के रूप में देखता है, क्योंकि ये सभी आप अधिकांश टिप्पणियों में पढ़ सकते हैं। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता कि ये वस्तुएं वास्तव में क्या हैं, लेकिन आप वस्तुतः किसी भी टिप्पणी में इनका विवरण और यहाँ तक कि रोम के साथ संबंध और इस तथ्य को भी पढ़ सकते हैं। ये सभी रोम द्वारा आयात किए गए थे। इनमें से अधिकांश व्यापारिक व्यवसाय में आकर्षक थे, ऐसी चीजें जो व्यापारियों के लिए आकर्षक होती और रोम शहर के कुलीन सदस्यों द्वारा बेशकीमती होती। इसलिए यह सूची रोम के चित्रण का समर्थन एक ऐसे शहर के रूप में करती है जो अत्यधिक धन और अत्यधिक विलासिता पर तुला हुआ है, और एक ऐसा शहर है जिसकी विशेषता भौतिक वस्तुओं के लिए इसकी प्यास और लालसा है, जिसके लिए जॉन रोम की आलोचना करता है। लेकिन अब व्यापारियों को इन मालों से अमीर बनने के रूप में भी चित्रित किया जाता है। लेकिन अब जब रोम नष्ट हो गया है और अब जब बेबीलोन रोम नष्ट हो गया है, तो वे अब रोम की संपत्ति पर विलासिता से रहने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में इस सूची में दो तत्व हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रकार का चौंकाने वाला है। उदाहरण के लिए सोने, चांदी और कीमती पत्थरों और बढ़िया लिनन और बैंगनी और रेशम साथ ही मोतियों के उल्लेख पर ध्यान दें। दुगना नंबर एक, बैंगनी लिनन और सोने और कीमती पत्थरों की तस्वीर वेश्या के वर्णन से मिलती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक तरह से वेश्या का वेश है। लेकिन इसके अलावा अध्याय 17 और श्लोक 1-3 में भी बैंगनी वस्त्रों और सोने और कीमती पत्थरों से सजी वेश्या का वर्णन न केवल वेश्या की पोशाक को दर्शाता है बल्कि उसके धन के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन को भी दर्शाता है। रोम, और अब हम इसे यहाँ दोहराते हुए देखते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने वेश्या के वर्णन के संबंध में पहले ही नोट कर लिया है, यह प्रकाशित वाक्य 21 में नए यरूशलेम के वर्णन का भी अनुमान लगाता है जो कीमती सोने और कीमती रत्नों से सुसज्जित है, जिसमें मोती के द्वार हैं, और इसे इस प्रकार चित्रित किया गया है, एक दुल्हन अपने पति के लिए सजी हुई। तो यह सारी संपत्ति इसकी आशा करती है। लेकिन जो बात दिलचस्प है वह यह है कि अंतिम आइटम सुझाव के बीच में है, और ध्यान दें कि यह सोने और चांदी और गहनों जैसी निर्जीव चीजों से मसालों और लकड़ी के उत्पादों तक कैसे पहुंचता है, और अंततः कपड़ा उत्पादों और इस तरह की चीजों तक भी पहुंचता है, और फिर तेल और गेहूं जैसे खाद्य उत्पाद। लेकिन फिर यह मवेशियों और भेड़ों और घोड़ों और गाड़ियों जैसी जीवित चीजों की ओर बढ़ता है, और इसके बीच में इसमें मनुष्यों के शरीर और आत्माएं भी शामिल हैं। सबसे अधिक संभावना है यह जोड़ा गया तत्व दास व्यापार को दर्शाता है जो रोम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और रोम में गुलामी की सीमा के बारे में सभी प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं। कोई व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से गुलाम बन सकता है। उनमें से एक यह था कि किसी के गुलाम बनने का एक कारण कर्ज के कारण खुद को गुलामी में बेचना था। दूसरा कारण यह होगा कि जब रोम किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता था तो दासों का आयात किया जाता था। तो यह नस्लीय गुलामी नहीं है बल्कि दिलचस्प बात यह है कि शायद रोम के उन प्रांतों के लोगों की भी गुलामी है जिन्हें उन्होंने अब गुलामों के रूप में आयात किया है। यह दिलचस्प है कि उन्हें भेड़ और मवेशियों के समूह में शामिल किया गया है, जैसे कि मानव शरीर के उल्लेख पर ध्यान देते हैं, जैसे कि मानव शरीर को अब विलासिता और वित्तीय लाभ के लिए व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के रूप में माना जाता है, उसी तरह मवेशियों और भेड़ों को भी। कुमा, लेकिन जॉन मानवीय आत्माओं को जोड़ता है, शायद यह स्पष्ट करने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। व्यापार की जाने वाली चीजों की इस सूची के अंत में शरीर सिर्फ एक अन्य वस्तु नहीं है बल्कि जॉन कहते हैं कि वे वास्तव में मानव आत्माएं हैं। लेकिन रोम अब उन्हें व्यापार या आयात की जाने वाली एक अन्य वस्तु के रूप में मान रहा है ताकि वे धन प्राप्त कर सकें। तो आपको यह तस्वीर मिल रही है, हालांकि यह प्रमुख नहीं है, फिर भी यह रोम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उनकी अर्थव्यवस्था बाकी साम्राज्य और दुनिया की कीमत पर हासिल की जाती है। वे अन्य देशों का शोषण करके और यहां तक कि अपने स्वयं के प्रांतों का शोषण करके अमीर और विलासी बन रहे हैं ताकि रोम धन में वृद्धि कर सके और अपनी वासना और अत्यधिक विलासिता की लालसा को संतुष्ट कर सके। पृथ्वी के राजाओं की तरह वे शोक मनाते हैं क्योंकि उनके धन का स्रोत माल की यह सूची हटा दी गई है। और श्लोक 14 की भाषा पर फिर से ध्यान दें, आपकी इच्छाओं का फल। इसलिए रोम को विलासिता, विलासिता और धन की चाहत रखने वाले के रूप में चित्रित किया गया है और अब इसे हटा दिया गया है। रोम की स्वसेवारत आर्थिक प्रणाली और धन नष्ट हो गया है, अर्थात रोम का अस्तित्व उसी रूप में था जैसा हमने देखा है कि वह स्वयं की सेवा करता था और यहाँ तक कि अपने स्वयं के प्रांतों के भीतर भी अन्य राष्ट्रों का शोषण और उन्हें नुकसान पहुँचाता था। अब यह समूह भी दूरी पर खड़ा है क्योंकि पृथ्वी के राजाओं की तरह तस्वीर शायद यह है कि वे न्याय से डरते हैं। वे अपने फैसले में हिस्सा नहीं लेना चाहते। और अब वे पृथ्वी के राजाओं की तरह नगर पर विपत्तियां सुनाते हैं। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में क्या होता है। ये तीनों समूह करेंगे और हमने देखा है कि पहले दो समूहों में इसमें रोम पर उनका विलाप और शोक शामिल होगा, क्योंकि रोम के कारण उसने जो कुछ खोया है। विनाश, यह उनके विनाश के लिए एक शोक जारी करेगा और फिर आम तौर पर उन्हें दूर खड़े होने का चित्रण करेगा ताकि वे उनके विनाश और उनके फैसले में शामिल न हों। श्लोक 16 व्यापारियों या पृथ्वी के राजाओं की प्रतिक्रिया का है। श्लोक 16 से पता चलता है कि वे चिल्लाते हैं, वाह 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 वाह, हो बढ़िया मलमल बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा पहने हुए, सोने कीमती पत्थरों और मोतियों से चमकता हुआ महान शहर। फिर से रोम की विलासितापूर्ण प्रकृति का जिक्र करते हुए 17 श्लोक 4 का जिक्र करते हुए और वेश्या को कैसे चित्रित किया गया था। तो स्पष्ट रूप से विचार यह है कि ये वे लोग हैं जिन्हें रोम ने बहकाया है, जो अपनी ईश्वर विहीन मूर्ति पूजक आर्थिक व्यवस्था में शामिल होकर रोम के साथ व्यभिचार करने के लिए फंस गए हैं और बहकाए गए हैं, जो पूरी तरह से रोम और उसके स्वयं के लाभ के लिए बनाई गई है। धन और अत्यधिक विलासिता की प्यास और लालसा। और अब ये व्यापारी वे हैं जिन्होंने रोम की संपत्ति में हिस्सा लेकर उसके साथ व्यभिचार किया है और फिर एक घंटे में महान धन को बर्बाद कर दिया गया है। तो शायद एक घंटा फिर से यहाँ बेबीलोन रोम के विनाश की अचानक और शीघ्रता और अचानक प्रकृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह कोई शाब्दिक शब्द नहीं है जो बताता है कि इसे नष्ट करने में केवल एक घंटा लगा, बल्कि एक घंटा बेबीलोन रोम के विनाश की विशेषता के रूप में त्वरितता और अचानकता का संकेत देने का प्रतीकात्मक मूल्य है। अंतिम समूह, अंतिम और तीसरा और अंतिम समूह, श्लोक 17 से 19 तक जहाज मालिकों का विलाप है। हम पहले ही दो बार नोट कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं, एक बार पूरी तरह से, लेकिन इजेकील 27 के कुछ खंड इजेकील में टायर के खिलाफ दैवज्ञ जो यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाज मालिकों और शिपिंग उद्योग के माध्यम से व्यापार में शामिल लोगों का उल्लेख अब जॉन के शिपिंग में शामिल उन लोगों के उल्लेख के पीछे है जिन्होंने रोम के साथ मिलकर समुद्री व्यापार से अपनी संपत्ति बनाई है। अब वे भी खड़े होकर बेबीलोन के विनाश के विनाशकारी प्रभाव को देख रहे हैं और वास्तव में यही तीसरे का मुख्य फोकस प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने कहा, यह तीसरा थोड़ा अधिक तीव्र प्रतीत होता है क्योंकि जॉन ने यहेजकेल 27 और श्लोक 28 से 33 तक की भाषा कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए ली है जो टाट पहनते हैं और अपने ऊपर धूल फेंकते हैं और यहाँ तक कि शोक में धूल में लौटते हैं। बेबीलोन का पतन। इसलिए इस खंड का प्राथमिक विषय पूरी तरह से विनाशकारी प्रभाव प्रतीत होता है जो अब बेबीलोन के पतन का उन लोगों पर पड़ता है जो उस पर निर्भर हैं। और यह इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि वे अब अपने सिर पर धूल फेंकते हैं, जो शायद पश्चाताप का संकेत नहीं है बल्कि केवल दुर्भाग्य और शोक का संकेत है। इसलिए इन लोगों को पश्चाताप करने वाले के रूप में चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि अपने सिर पर कहीं और धूल और राख डालना पश्चाताप का संकेत है। यहाँ जैसा कि यहेजकेल 27 में है, यह केवल शोक और शोक का संकेत है, किसी के पापों के लिए नहीं बल्कि उस शहर के पतन के लिए जिस पर वे अमीर बने थे। तो रोम के निधन पर शोक मनाने वालों की इस तीन गुना पुनरावृत्ति का उल्लेख यहाँ किया गया है और शायद उन्हें तीन अलग अलग समूहों की दोहराव प्रकृति पर जोर देने के कारण तीन में विभाजित किया गया है, लेकिन वे सभी रोम से समृद्ध हुए हैं और अब उन्होंने अपने धन का स्रोत खो दिया है। इसलिए वे सभी बैठे या खड़े होकर रोम के फैसले का अवलोकन कर रहे हैं, अब दूर खड़े होकर दुहक के विलाप कर रहे हैं और शहर पर संकट की घोषणा कर रहे हैं। यह सब उन लोगों पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करके रोम के फैसले को ऊंचा उठाने के लिए है जिन्हें इससे लाभ हुआ, अर्थात जिन लोगों ने व्यभिचार किया उन्होंने रोम नगर के साथ व्यभिचार किया। जिन्हें रोम ने अपनी संपत्ति में भाग लेने और रोम तथा उसके वाणिज्य से समृद्ध होने के लिए बहकाया। अब यह इस पाठ का मतलब है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी अनुवाद यहाँ विराम नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे चूक जाते हैं, लेकिन एक स्पष्ट विराम है जो अध्याय 18 में श्लोक 20 में होना चाहिए या किसी प्रकार का विराम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब आपके पास रोम से समृद्ध हुए तीन समूहों के संकटों और विलापों के बीच स्पष्ट अंतर है जो अब इसके विनाश और न्याय पर विलाप कर रहे हैं। श्लोक 20 में अब आपको संतों के एक समूह से परिचित कराया जाता है जो इसके विपरीत श्लोक 20 में रोम के पतन पर खुशी मनाते हैं। इसलिए पृथ्वी के राजाओं, व्यापारियों और जहाज मालिकों के तीन समूह ही एकमात्र समूह नहीं हैं जो रोम के पतन पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे शोक में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि वे अमीर हो गए थे और वे ही लोग थे जो रोमन अर्थव्यवस्था में अमीर बनने के लिए बहकाए गए थे। लेकिन अब आपके पास रोम, बेबीलोन रोम के पतन का जवाब देने वाला एक और समूह है और वह पद 20 में संत हैं। यह कहता है, हे स्वर्ग, उस पर आनंद मनाओ, आनंदित रहो संतों और प्रेरितों और पैगंबरों। जिस तरह उसने आपके साथ व्यवहार किया है उसके आधार पर भगवान ने उसका न्याय किया है। दिलचस्प बात यह भी है कि अध्याय 18 मूलतः तीसरे व्यक्ति में विभिन्न समूहों का वर्णन करता है। पृथ्वी के राजाओं ने यही किया और व्यापारियों ने यही किया और जहाज के मालिकों ने यही किया। अब श्लोक 20 में यह दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है जहां स्वर्ग, संतों, प्रेरितों और पैगंबरों को सीधे संबोधित किया जाता है और अब उन्हें खुशी मनाने का आदेश दिया गया है क्योंकि भगवान ने बेबीलोन का न्याय किया है और उनका बदला लिया है। तो श्लोक 20 एक तरह से जोरदार है, इसलिए हमें श्लोक 19 और 20 के बीच थोड़ा बदलाव देखना चाहिए। अब संतों की प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण है और इसका मतलब व्यापारियों की प्रतिक्रिया के खिलाफ तीव्र राहत में खड़ा होना है। रोम का पतन। हालांकि यह दिलचस्प है कि श्लोक 20 में लेखक यिर्मयाह 51 को फिर से उठाता हुआ प्रतीत होता है। यूहन्ना अध्याय की शुरुआत में ही यिर्मयाह 51 से शुरू करता है, विशेषकर पद 4 में। यह संभवतः बेबीलोन से भागने के आदेश के पीछे निहित है। लेकिन हमने देखा है कि जॉन यिर्मयाह से दूर चला गया है क्योंकि वह रोम की आर्थिक प्रथाओं, उसकी मूर्ति पूजा और विशेष रूप से उसके धन में भाग लेने के लिए राष्ट्रों को लुभाने की उसकी आकर्षक प्रथाओं की आलोचना करना चाहता है। और इसके लिए जॉन एक अन्य दैवज्ञ के पास गया है, यानी टायर के खिलाफ दैवज्ञ, जिसने टायर के व्यापार और उसके अत्यधिक विलासिता और धन के लिए निंदा की, वही बात जिसके लिए जॉन रोम की आलोचना करना चाहता है। इसलिए जॉन फिर रोम के चित्रण और उसकी आलोचना के लिए ईजेकील के पास गया, विशेष रूप से अध्याय 27 में। लेकिन फिर यिर्मयाह के अध्याय 51 श्लोक 48 में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है वह बेबीलोन पर खुशी से जय जयकार करेगा क्योंकि उत्तर से विध्वंसक हमला किया गया था। तो यिर्मयाह 51 आयत 48 में स्वर्ग और पृथ्वी के खुशी से चिल्लाने या बाबुल पर खुशी मनाने के उल्लेख पर ध्यान दें। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद 20 के पीछे छिपा है जहां स्वर्ग और सभी संत और भविष्यवक्ता अब आनंद मना रहे हैं और उन्हें बेबीलोन के विनाश पर आनंद मनाने के लिए बुलाया गया है। इसलिए बेबीलोन के फैसले पर संतों की प्रतिक्रिया उनके खून का बदला लेने और खुशी मनाने के लिए थी। अब जॉन यिर्मयाह अध्याय 51 के अपने प्राथमिक मॉडल पर लौट आया है जो बेबीलोन के फैसले का वर्णन करता है। तो यह हमें बेबीलोन के पतन के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं के अंत तक लाता है। उनमें से एक उन लोगों की प्रतिक्रिया से नकारात्मक है जिन्हें अपनी आर्थिक प्रथाओं के माध्यम से रोम के नाजायज और गलत तरीके से अर्जित लाभ में शामिल होने के लिए बहकाया गया है। और अब श्लोक 20 में बिल्कुल विपरीत संतों की प्रतिक्रिया कि भगवान ने अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम किया है, अब बेबीलोन रोम का न्याय करके उनका बदला लेने के लिए और इसलिए संत आनंदित होते हैं। अध्याय 21 से 24 श्लोकों में बेबीलोन की तबाही और विनाशकारी प्रभावों के अंतिम सारांश के साथ समाप्त होता है। और एक बार फिर 21 और 24 में हम अस्थाई रूप से व्यवस्था से बाहर प्रतीत होते हैं, यानी 21 से 24 तक बेबीलोन के पतन की आशंका प्रतीत होती है। तो अस्थाई रूप से 21 से 24 श्लोक 9 से 19 तक श्लोक से पहले हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से मानता है कि बेबीलोन पहले ही गिर चुका है। अब आपके आसपास के सभी लोग विलाप कर रहे हैं और इसके पतन का शोक मना रहे हैं। अब छंद 21 से 24 अस्थाई रूप से आपको बेबीलोन के पतन से पहले की ओर ले जाते प्रतीत होते हैं, लेकिन साथ ही यह बेबीलोन की तबाही और उसके प्रभावों की और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आगे संभवतः श्लोक 20 में संतों के आनंदित होने के आधार का वर्णन किया गया है, इसलिए श्लोक 21 से 24 आगे उस कारण का वर्णन करते प्रतीत होते हैं कि संत आनंद क्यों मनाते हैं, जैसा कि वे श्लोक 20 में करते हैं। और इसलिए यह वास्तव में एक भविष्यवाणी कार्य से शुरू होता है। कभी कभी भविष्यवाणी ग्रंथों में आप भविष्यवक्ताओं को वास्तव में एक प्रकार के कार्य में संलग्न देखते हैं जिसका प्रतीकात्मक महत्व होता है। और उनमें से एक यिर्मयाह अध्याय 51 में एक बार फिर पाया जाता है। यिर्मयाह 51 में जॉन ऐतिहासिक बेबीलोन के फैसले में समग्र गिरावट को चित्रित करने के लिए जिस मॉडल का उपयोग कर रहा है, और जॉन ने कई बार इसका उपयोग किया है। अब अध्याय 51 और श्लोक 63 में हमें एक दिलचस्प भविष्य सूचक कार्य या भविष्य सूचक कार्य मिलता है जिसका प्रतीकात्मक महत्व है। और यहाँ यह श्लोक 63 में है, मैं पद 62 से आरंभ करूंगा। तब कह हे यहोवा, तूने कहा है कि तू इस स्थान अर्थात बाबुल को ऐसा नाश करेगा कि इसमें न मनुष्य रहेगा न पशु, वह सदैव उजाड़ रहेगा। जब तुम इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त कर लो तो उस पर एक पत्थर बांध दो और उसे परात नदी में फेंक दो। फिर कहो, बाबुल ऐसा डूबेगा कि फिर न उठेगा। उस विपत्ति के कारण जो मैं उस पर लाऊंगा, उसके लोग गिर जाएंगे। यह श्लोक 21 में जो घटित होता है उसके लिए एक मॉडल प्रदान करता है, एक शक्तिशाली देवदूत। आपको इसके साथ कोई पुस्तक बंधी हुई नहीं मिलती है, बल्कि एक देवदूत एक प्रकार के प्रतीकात्मक कार्य, एक भविष्य सूचक प्रतीकात्मक कार्य में एक चक्की उठाता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। और फिर जैसा कि आपने यिर्मयाह 51 में पाया, स्वर्गदूत इसकी व्याख्या करता है और कहता है, ऐसी हिंसा के साथ महान शहर को भी नीचे फेंक दिया जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। तो यिर्मयाह 21 से देवदूत की ओर से यह प्रतीकात्मक कार्य एक प्रतीकात्मक गतिविधि या बाबुल रोम के पतन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो आप देख सकते हैं कि जॉन क्या कर रहा है। वह प्रदर्शित कर रहा है कि बेबीलोन के ऐतिहासिक पतन को अब एक प्रकार के नए बेबीलोन के पतन के रूप में चित्रित किया गया है, और वह रोम शहर और रोमन साम्राज्य है। और श्लोक 22 और 23 फिर 22 और 23 आगे इसके परिणाम को दर्शाते हैं, और वह यह कि बेबीलोन में जीवन के सभी चिन्ह लुप्त हो जाएंगे। यह एक बार फिर से प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि जीवन की सभी सामान्य चीजें जो आप सुनते हैं, बांसुरी और वीणा बजाना और शादियां, चक्की पीसना, अनाज पीसना, वे सभी चीजें, एक दीपक की रोशनी जो आप सुनते हैं घरों में देखेंगे, वे सब खत्म हो जाएंगे। वे सभी बेबीलोन के विनाश की सीमा और पूर्ण प्रकृति के एक और संकेत के रूप में गायब हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि 23 और 24 बेबीलोन के पतन के कारणों को दोहराते हुए समाप्त होते हैं। नंबर एक, आपके व्यापारी दुनिया के महान व्यक्ति थे और तेरे जादू से सारी जातियां भरमा गई। उसमें भविष्यवक्ताओं और संतों और पृथ्वी पर मारे गए सभी लोगों का खून पाया गया था। तो सबसे पहले महापुरुषों के उल्लेख पर ध्यान दें, जो संभवतः रहस्योद्घाटन के अध्याय 4 और 5 में व्यक्त भजनों में की गई प्रशंसा, पूजा और महिमा के सीधे विरोध में उनके अहंकार और उनके आत्ममहिमा का सुझाव देता है। तो एक बार फिर अहंकार और आत्ममहिमा दैवीय अधिकार और शक्ति को सिंचित करती है, अपने लिए दावा करती है जो केवल भगवान का है। यह पहला अपराध है जिसके लिए रोम और इसमें भाग लेने वाले राष्ट्र अब दोषी हैं। दूसरा यह है कि उसका जादू या जादूटोना राष्ट्रों को भटकाता है और हमें इसे कितने शाब्दिक रूप से लेना चाहिए या नहीं। अध्याय 17 और 18 में जॉन ने पहले ही रोम की जो आलोचना की है उसे दोहराने का मुख्य बिंदु यह है कि रोम ने अन्य देशों को उसके साथ व्यभिचार करने के लिए बहकाया है। वह उन्हें धोखा देने और अपनी भ्रामक, आकर्षक और मोहक मूर्ति पूजा और आर्थिक प्रथाओं में फंसाने की दोषी है। और फिर अंततः वह परमेश्वर के लोगों के खून के लिए भी जिम्मेदार है। यानी हम उस विषय को पहले ही देख चुके हैं। वह हिंसा की दोषी है, यानी वह संतों के खून से नशे में है। वह उन लोगों के खून की दोषी है जिन्हें उसने सताया है। संभवतः यिर्मयाह 51 और 49 को भी प्रतिबिंबित करता है। ध्यान दें कि यह कैसे समाप्त होता है। यह न केवल संतों का खून है बल्कि पृथ्वी पर सभी लोगों का खून है जो उसके कारण मारे गए हैं। फिर रोम को एक ऐसे साम्राज्य के रूप में चित्रित करना जो हिंसा के माध्यम से अपना शासन फैलाता है, जो अपनी शांति बनाए रखता है, अपना शासन बनाए रखता है, जो हिंसा के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखता है। यिर्मयाह अध्याय 51 और श्लोक 49 संभवतः वह पाठ है जिस पर जॉन आधारित है। इसराइल के मारे जाने के कारण बाबुल का गिरना निश्चित है, जैसे बाबुल के कारण सारी प्रियवी पर मारे गए लोग गिर गए हैं। तो यिर्मयाह 51 और 49 में ध्यान दें कि बेबीलोन परमेश्वर के लोगों, इसराइल और साथ ही पृथ्वी पर रहने वालों को मारने का दोषी है। और अब प्रकाशित वाक्य 18 भविष्यवक्ताओं और संतों के खून के साथ समाप्त होता है जिसके लिए रोम दोषी है, लेकिन उन लोगों के साथ भी जो पृथ्वी पर मारे गए हैं। तो अध्याय 18 को समाप्त करने के लिए मूल रूप से 18 संतों के लिए बेबीलोन के पतन, बेबीलोन के फैसले पर खुशी मनाने का आह्वान है, क्योंकि बेबीलोन का पतन संतों के खून का बदला लेने और उन्हें न्याय दिलाने में ईश्वर के न्याय की न्यायसंगतता को दर्शाता है। लेकिन साथ ही लेखक बेबीलोन के फैसले और पतन के आधार का वर्णन करता है, जिससे हमें बेबीलोन के पतन के कम से कम 3 कारण बताकर संतों को खुशी होनी चाहिए। अध्याय 17 और 18 में व्यक्त किया गया है। नंबर एक यह है कि बेबीलोन स्वयं को महिमामंडित करता है। बेबीलोन रोम स्वयं को भगवान के रूप में स्थापित करता है। बेबीलोन रोम उस अधिकार का दावा करता है जो केवल ईश्वर का है और वह पूजा और महिमा प्राप्त करता है जिसके केवल ईश्वर ही हकदार हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 4 और 5। दूसरा, बेबीलोन रोम अहंकारी है और अपनी संपत्ति में अत्यधिक है, यहाँ तक कि अन्य देशों की कीमत पर भी। बेबीलोन रोम को धन और विलासिता की लालसा के रूप में चित्रित किया गया है, अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं की प्यास के रूप में, और ऐसा करने के लिए भले ही इसका मतलब अन्य देशों और यहाँ तक कि अपने स्वयं के प्रांतों का शोषण करना हो। इसके अलावा यह तीसरा भी हो सकता है, लेकिन धन के मुद्दे के अलावा उन्होंने धन संचय करने की अपनी इच्छा और अत्यधिक विलासिता के उपभोग के साथ साथ अन्य देशों को भी व्यभिचार करने के लिए प्रेरित किया है। उनके साथ उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें व्यभिचार करने के लिए उकसाया जा रहा है, जो उनकी ईश्वर विहीन आर्थिक व्यवस्था में शामिल है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से रोम के स्वार्थी लाभ के लिए है। और फिर तीसरा, बेबीलोन, रोम अत्यधिक हिंसा का दोषी है। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मार डाला है। वे मुख्य रूप से संतों, परमेश्वर के लोगों के खून के दोषी हैं, लेकिन साथ ही अन्य राष्ट्रों के लोगों के भी दोषी हैं, जिन्हें उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। इसे चित्रित करने के लिए बेबीलोन, रोम के चरित्र और उसके फैसले का वर्णन करने के लिए लेखक ने कई पुराने नियम के ग्रंथों, यिर्मयाह जैसे कई पुराने नियम के ग्रंथों, लेकिन यहेजकेल और यशायाह का भी सहारा लिया है, जो न्याय और पतन को दर्शाते हैं। अन्य ऐतिहासिक राष्ट्र जो एक ही अपराध के दोषी थे, तो उस समय रोम को इन सभी विशेषताओं के संयोजन और उभरने के रूप में देखा जाता है, उसी तरह जैसे भगवान ने अतीत के ईश्वर विहीन शहरों की निंदा की और उनका न्याय किया। एक बार फिर उसके लोगों को आश्वासन दिया जा सकता है कि वह रोम के रूप में एक और दुष्ट, ईश्वर विहीन, मूर्ति पूजक राष्ट्र का न्याय करेगा। और इसलिए जॉन इस बारे में निश्चित हो सकता है, क्योंकि पुराने नियम ने उसे बताया है और अन्य मूर्ति पूजक, धनी, हिंसक साम्राज्यों का न्याय करने के लिए ईश्वर को एक मॉडल प्रदान किया है। और ऐतिहासिक रूप से रोम का न्याय वास्तव में एक सदी बाद किया गया। और एक स्तर पर प्रकाशित वाक्य 17 और 18 वास्तव में जॉन के समय के रोम के पतन में पूरा हुआ, जिसका वह अपने समय में सामना कर रहा था। और इसलिए इन सभी अन्य साम्राज्यों को मूर्त रूप देने वाले रोम का भी अब यही हश्र हो रहा है। इसलिए जॉन अन्य पुराने नियम के भविष्य सूचक ग्रंथों के माध्यम से इसकी व्याख्या करता है। साथ ही मुझे विश्वास है कि शायद और हम बेबीलोन और रोम को कैसे समझते हैं, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए जॉन स्पष्ट रूप से रोम शहर, अपने समय के साम्राज्य और सम्राटों पर अपनी बंदूकों का निशाना बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह है, लेकिन हमने ये पहले भी देखा है, विशेष रूप से जब आप 17 और 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जॉन ने रोम के प्रथम शताब्दी के शहर रोम के फैसले को बड़ी दुनिया पर भगवान के फैसले की पृष्ठभूमि में रखा है। और बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि अंत समय का शहर, वह शहर शायद ईश्वर के विरोध में पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा नहीं है कि जॉन फिर रोम को देखता है और फिर साम्राज्यों के उत्तराधिकार की भविष्यवाणी करता है। ऐसा नहीं है कि जॉन को लगता है कि रोम और अंतिम फैसले के बीच लंबा अंतराल हो सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि जॉन को अपने पाठकों को स्थिति की प्रकृति को देखने में मदद करनी है और सच्चे सर्वनाशकारी अंदाज में रोम की वास्तविक प्रकृति को उजागर करना है और उन्हें उनकी स्थिति पर एक परिप्रेक्ष्य देना है। जॉन न केवल पहली सदी के रोम की उनकी स्थिति को देखता है और उसकी व्याख्या करता है, बल्कि संभवतः भगवान के दुश्मनों के अंतिम विनाश और पृथ्वी और दुनिया के अंतिम फैसले की व्यापक पृष्ठभूमि के खिलाफ इसके विनाश को चित्रित करता है, जिसे हम देखेंगे कि जॉन जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए तुरंत अध्याय 19 में जाएं, उदाहरण के लिए बस एक क्षण में। इसलिए हमें संभवतः रोम और उसके विनाश को, हाँ, पहली शताब्दी के रोम में ऐतिहासिक रूप से पूरा होते हुए देखना चाहिए, लेकिन फिर एक छवि का उपयोग करके बेबीलोन, जिसका इतिहास पुराने नियम में है, यह लगभग वैसा ही है जैसे जॉन ने एक ऐसे प्रतीक का उपयोग किया है जो अपने प्रकार का आदर्श या एक प्रकार का मॉडल प्रदान करता है, जो अंततः पूरी दुनिया को कवर करेगा, जो परमेश्वर और उसका मेमना यीशु मसीह अंतिम न्याय में अंत लाएंगे। तो पहली सदी के रोम को अब पूरी दुनिया पर भगवान के अंतिम फैसले की व्यापक पृष्ठभूमि के खिलाफ चित्रित किया गया है। अब बाबुल के पतन का निष्कर्ष अध्याय 19 और श्लोक 1 से 6 में मिलता है। और फिर श्लोक 6 से 10 में हम एक अंतिम भजन गाएंगे और एक परिवर्तन करेंगे। दरअसल श्लोक 6 श्लोक 1 से 5 के साथ जा सकता है क्योंकि यह गाया जाने वाला अंतिम भजन है, लेकिन फिर 9 और 10 एक संक्रमण प्रदान करेंगे बेबीलोन रोम के फैसले के दृश्य के लिए एक निष्कर्ष की तरह, और 1911 में शुरू होने वाले अगले दृश्य में एक संक्रमण प्रदान करेंगे जो अंतिम निर्णय है। लेकिन 19:1-6 1820 में हमने अभी देखा कि संतों को बेबीलोन के पतन पर खुशी मनाने के लिए कहा गया था। अब सारा स्वर्ग, भविष्यवक्ता और प्रेरित सभी बेबीलोन के पतन पर खुशियां मनाएंगे, हालांकि इसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन यहां मुझे लगता है कि उनकी खुशी का विस्तार हो जाता है। तो मुझे 19:1-6 पढ़ने दीजिए। इसके बाद यानी 18 में उसने जो घटनाएं देखी, उसके बाद मैंने स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ की दहाड़ जैसी आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी, हलेलुया, मोक्ष और महिमा और शक्ति हमारे भगवान की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उन्होंने उस महान वेश्या की निंदा की है जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया था। उसने उससे अपने नौकरों के खून का बदला लिया है। और फिर वे चिल्लाए, हलेलुया, उसका धुआं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठता रहता है। तब 24 पुरनियों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा था दंडवत किया और चिल्लाकर कहा, आमीन, हलेलुया। तब सिंहासन में से यह शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब सेवकों, हे छोटे क्या बड़े, तुम सब जो उससे डरते हो उसकी स्तुति करो। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा शब्द सुना जो जल की धारा के गर्जन और गर्जन के समान ऊंचे शब्द से चिल्ला रहा था, हलेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य कर रहा है। आइए हम आनंदित हो, मगन हो और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का ब्याहा पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे पहनने के लिए चमकीला और साफ बढ़िया बढ़िया लिनन दिया गया। बढ़िया लिनेन संतों के धार्मिक कृत्यों का प्रतीक है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि अध्याय 8 श्लोक 20 में ये भजन है, पूरे स्वर्ग को चिल्लाना और आनंद मनाना था। अब हम देखते हैं कि पूरा स्वर्ग एक बड़ी भीड़ के रूप में चिल्ला रहा है और खुशी मना रहा है। 24 बुजुर्गों और 4 जीवित प्राणियों के रूप में, सिंहासन से एक आवाज के रूप में जो अब स्तुति में चिल्ला रही है। ध्यान दें, दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन, इसकी शुरुआत श्लोक 19 की शुरुआत में एक बड़ी भीड़ से होती है जो एक बड़ी भीड़ की दहाड़ जैसी लगती थी। फिर यह पद 4 में 24 बुजुर्गों और 4 जीवित प्राणियों तक सीमित हो जाता है। और फिर श्लोक 5 में और भी अधिक एक आवाज जो सिंहासन से आती है। और फिर यह छंद 6-8 में फिर से एक और बड़ी भीड़ तक फैल जाता है, जहां एक चरम दृश्य में अब आपके पास एक आवाज है जो बहते पानी की गर्जना और गड़गड़ाहट की तेज गड़गड़ाहट की तरह लगती है। तो व्यापक से बहुत संकीर्ण तक की गति पर ध्यान दें, सिंहासन से आवाज और वापस बाहर आकर एक बड़ी भीड़ की तरह एक आवाज को घेरें, जिसकी आवाज तेज पानी और गड़गड़ाहट की तरह हो। इसका प्राथमिक कार्य, फिर श्लोक 18 से भी इसका प्राथमिक विषय, संतों के आनंद और प्रशंसा का संकेत देते हुए अब तक हुए निर्णय की और व्याख्या करना है। मैं यह भी नोट करता हूं कि मैं बस यह प्रदर्शित करना चाहता हूं कि यह अध्याय 18 से कुछ प्रमुख विषयों को कैसे उठाता है। उदाहरण के लिए ध्यान दें कि भगवान के फैसले को पवित्र और न्यायपूर्ण बताया गया है, ताकि अध्याय 17 और 18 में जो कुछ घटित होता है उसे परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक चरित्र के परिणामस्वरूप वर्णित किया जाए। उस आधार पर वह अब एक दुष्ट और ईश्वर विहीन साम्राज्य का न्याय करने का कार्य करता है। दूसरा, इस फैसले के कारण की पुनरावृत्ति पर फिर से ध्यान दें, जो कि बेबीलोन के अपराध या बेबीलोन के पाप हैं। उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा और धन की लालसा से पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया है, और उन्होंने दूसरों का नेतृत्व किया है और दूसरों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। तीसरा, भगवान द्वारा अपने संतों के खून का बदला लेने पर जोर पर ध्यान दें। यह संभवतः पाठ को न केवल संतों की प्रार्थना से जोड़ता है, जिसे हमने कई बार देखा है, विशेष रूप से धूप के साथ मिश्रित, जिसे देवदूत ने अध्याय 8 में डाला था, बल्कि अध्याय में शहीदों की पुकार से भी जुड़ा है। 6 श्लोक 10। हे भगवान, कब तक तुम हमारे खून का बदला लेते रहोगे? जब तक तुम हमें न्याय संगत नहीं ठहराते। अब परमेश्वर अपने लोगों के शत्रुओं का बदला लेकर उनके शत्रुओं का न्याय करके उन्हें न्यायोचित ठहराता है। यह दिलचस्प है कि अब तक हमने मुख्य रूप से ईश्वर द्वारा अपने लोगों के दुश्मनों का न्याय करने, उनके खून का बदला लेने के संदर्भ में पुष्टि देखी है। जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किया है, जिन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है, जिन्होंने उनकी वफादार गवाही के कारण उन्हें नष्ट करने की कोशिश की है, अब परमेश्वर उन्हें दोषी ठहराकर उन पर न्याय लाकर जवाब देता है। यह अब तक एक प्रमुख विषय रहा है। हालांकि पुष्टिकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा, जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है, कम से कम स्पष्ट रूप से यह है कि भगवान उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। ऐसा नहीं है कि वह केवल उनके शत्रुओं का नकारात्मक मूल्यांकन करेगा, बल्कि परमेश्वर उन्हें पुरस्कृत करके उन्हें सही ठहराएगा। हमने इसके संकेत पहले ही देख लिए हैं, उदाहरण के लिए अध्याय 7 में, अध्याय 14 में भी थोड़ा सा, और 15 में, जहां संत समुद्र पर विजयी हुए हैं, उन्होंने जानवर के प्रति समर्पण करने और उसकी छवि की पूजा करने से इनकार कर दिया है। अब संत एक नए निर्गमन में समुद्र के किनारे विजयी होकर खड़े हैं। इसलिए हमने पहले से ही ईश्वर द्वारा अपने संतों की पुष्टि करते हुए उनके दुश्मनों को न केवल न्याय करने और दंडित करने के द्वारा, जिन्होंने उन्हें सताया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि अब उन्हें पुरस्कृत करके, पुरस्कार के माध्यम से उनकी पुष्टि करके, उन्हें उनकी विरासत देकर पुरस्कृत करते हुए भी देखा है। हम देखेंगे कि उनके प्रतिशोध का सकारात्मक पक्ष अध्याय 20 से शुरू होकर अध्याय 22 तक भी अधिक विस्तार से स्पष्ट हो जाएगा। तो अध्याय 17 और 18 की घटनाओं की व्याख्या करने वाले संतों की पुकार, या यहाँ श्लोक 1 से 6 में संतों की प्रशंसा, वास्तव में 1 से 8 श्लोक 6 अंतिम पुकार श्लोक 7 और 8 की सामग्री है। वह भगवान ने अब अपने संतों के खून का बदला उन लोगों को दंडित और न्याय करके लिया है, जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था और जिन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। फिर अंत में निर्णय की भाषा पर भी ध्यान दें। मैं अध्याय 18 छंद 8 और यशाया अध्याय 34 और 9 और 10 से पुराने नियम के पाठ को प्रतिबिंबित करते हुए धुएं की यह भाषा ऊपर उठने जलने की भाषा न्याय के प्रतीक के रूप में चित्रित करता हूँ, और अब इसे आगे शाश्वत न्याय के रूप में संतों के आनंद मनाने के आधार के रूप में वर्णित किया गया है। तो भगवान के चरित्र के सभी विषय, उनकी पवित्रता और न्याय और धार्मिकता, उनके फैसले के आधार के रूप में अपने स्वयं के अत्यधिक विलासिता में बेबीलोन के पाप, लेकिन राष्ट्रों को उसमें शामिल करना और बहकाना, भगवान की बदला लेने की इच्छा लोगों को उसके शत्रुओं को दंडित करना, और फिर धुएं के रूप में निर्णय को चित्रित करना, ये सभी केवल उन विषयों की निरंतरता हैं जिनसे हम अध्याय 17 और 18 में बाबुल के न्याय और विनाश की कथा में पहले ही परिचित हो चुके हैं। एक अन्य छंद 6, 7 और 8 में इस अंतिम भजन के बारे में कुछ अन्य टिप्पणियों के बारे में ध्यान दें कि सर्वशक्तिमान का संदर्भ हावी होना शुरू हो गया है। हमने कहा है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में यह लगभग वही दोहराता है जो हमने सातवीं मुहर या अध्याय 11 श्लोक 17 में सातवीं तुरही में पाया था, जो हमें बिल्कुल अंत तक ले आया, जो कि प्रभु के अंतिम दिन की प्रत्याशा या स्नैपशॉट की तरह था, जहां दुनिया का राज्य अब भगवान का राज्य बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि श्लोक 6 में दोहराया गया विषय सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर शासन करता है, अर्थात अंतः परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग में उसकी इच्छा ने अब अंतः पृथ्वी को घेर लिया है। इस संसार का राज्य अब परमेश्वर का राज्य बन गया है और परमेश्वर अब सभी चीजों पर विजयी होकर शासन करता है। हमने कहा अध्याय 4 और 5 की पूर्ति में जहां स्वर्ग में भगवान की संप्रभुता को स्वीकार किया गया है, पृथ्वी पर कार्य किया जाना चाहिए। अब हम पाते हैं कि बेबीलोन के विनाश के साथ बेबीलोन का साम्राज्य हटा दिया गया है। पृथ्वी का राज्य अब बेबीलोन रोम का नहीं है, बल्कि अब यह परमेश्वर का है जो पूरे ब्रह्मांड पर सर्वशक्तिमान संप्रभु राजा है। हमने कहा कि प्रकाशित वाक्य जिन प्रश्नों का उत्तर देता है उनमें से एक प्रमुख प्रश्न यह है कि नियंत्रण में कौन है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर संप्रभु शासक कौन है? क्या यह बेबीलोन है, क्या यह रोम है, या कोई अन्य ऐतिहासिक शहर, या यह ईश्वर ही है? और अब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य अब पृथ्वी पर आ गया है। हम एक और महत्वपूर्ण विषय भी देखते हैं जिसे बाद में उठाया जाएगा, जो कि अपने लोगों के लिए भगवान के वादों की पूर्णता है, और यहाँ हम पुष्टि के सकारात्मक पहलू को देखना शुरू करते हैं, अपने लोगों से किए गए परमेश्वर के वादों को अब विवाह भोज के संदर्भ में समझा जाता है। अध्याय 19 के पद 7 और 8 में मेमने का विवाह आ गया है और उसकी दुल्हन ने स्वयं को तैयार कर लिया है और बढ़िया मलमल, श्वेत चमकीला मलमल उसे दिया गया है। अब लेखक छंद 7 और 8 में भोज चित्रण, जैसे कि विवाह भोज चित्रण की ओर मुड़ता है। इसके पीछे जो छिपा है वह शायद एक बार फिर पुराने नियम की कल्पना है, जहां इसराइल को यहोवा की दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया था और यहोवा उसके पति थे, और मुझे लगता है कि यह पृष्ठभूमि प्रदान करता है इस चित्रण के लिए भगवान और उसके लोगों के बीच अंतिम समय के विवाह का यह गूढ़ चित्रण। हालांकि अब पुराने नियम के पाठ से अलग परमेश्वर के लोग अब पुराने नियम के जातीय इसराइल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अब इसमें हर जनजाति और भाषा और राष्ट्र और भाषा के लोग शामिल हैं जो मसीहा यीशु मसीह के आसपास केंद्रित हैं, और वे अब उनकी दुल्हन बन गए हैं। संभवतः इसके लिए पृष्ठभूमि प्रदान करने वाले ग्रंथों में से एक वह पाठ है जो बाद में प्रकाशित वाक्य में घटित होगा, और वह यशायाह अध्याय 61 है। यशायाह भगवान के युगांत संबंधी अंत समय का वर्णन करने के लिए विवाह संबंधी कल्पना, विवाह भाषा और विवाह संबंधी भाषा का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। अपने लोगों से संबंध उन ग्रंथों में से एक है यशायाह अध्याय 61 और श्लोक 10 में। यशायाह अध्याय 61 और श्लोक 10, मैं प्रभु में बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर में आनंदित है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और मुझे वस्त्र पहनाया है, धर्म का वस्त्र, जैसे दूल्हा याजक के समान अपने सिर को शोभायमान करता है और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो यहाँ एक दुल्हन की खुद को सजाने की यह भाषा, और अब इसे शादी के लिए तैयार दुल्हन के रूप में चित्रित किया जा रहा है, और अब इसे दूल्हे, जो कि यीशु मसीह है, के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, अब अपने चरम और पूर्णता पर पहुंच गई है, जैसा कि यशायाह से उम्मीद की गई थी। लेकिन जैसा कि हमने सुझाव दिया, अंतर यह है कि अब परमेश्वर के लोग केवल जातीय इसराइल नहीं हैं, बल्कि इसमें इसराइल भी शामिल है, बल्कि इसमें अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं जो अब मेमने की दुल्हन हैं। लेखक ने सफेद वस्त्रों की व्याख्या संतों के कार्यों के रूप में की है। संभवत यहाँ सफेद वस्त्र फिर से उनकी पवित्रता को दर्शाते हैं, तथ्य यह है कि वे रोमन शासन से बेदाग रहे हैं, इसके व्यभिचारी मूर्ति पूजक प्रथाओं में भाग ले रहे हैं, उन राष्ट्रों के विपरीत जो रोमन शासन में थे। रोम के साथ व्यभिचार करने के लिए बहकाया गया। अब परमेश्वर के लोगों को व्यभिचारी होने के बजाय मेमने यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और अब वे यीशु मसीह के सामने खड़े होकर अपनी जीत, अपनी पवित्रता और अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनते हैं। यहाँ की भाषा भी विवाह भोज की इस धारणा को प्रतिबिंबित कर सकती है कि विवाह भोज युगांतिक मुक्ति का प्रतीक है और यीशु के दृष्टांतों को भी प्रतिबिंबित कर सकता है। मैथ्यू का अध्याय 22, एक विवाह भोज और उसमें आमंत्रित लोगों का एक दृष्टांत है। मैथ्यू अध्याय 25 एक शादी की तैयारी के संदर्भ में 10 कुंवारियों का प्रसिद्ध दृष्टांत है, जिनमें से 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान हैं। तो भोज भाषा, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि संभवतः अन्यत्र भी है, यीशु की परंपरा के साथ जॉन के संपर्क का एक और उदाहरण हो सकता है, और यीशु की अपनी शिक्षा के साथ और युगांत संबंधी विवाह भोज पर उनकी शिक्षा उनके अंतिम युगांत संबंधी मोक्ष के प्रतीक के रूप में हो सकती है। एक और समानता जिसे जॉन चित्रित कर रहा है या कम से कम उसके बारे में जानता है, वह यह है कि पॉल ने इफिसियों के अध्याय 5 में भी रूपक के साथ क्या किया है, जहां पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मसीह और उसके चर्च के बीच के रिश्ते के लिए एक मॉडल बन जाता है, जैसे कि उसका वह दुल्हन तैयार करेगा जिसे वह पवित्र और निर्दोष उसके सामने पेश करेगा। यह वह चित्र हो सकता है जो हमें यहाँ मिलता है। शादी के भोज में दुल्हन की छवि स्पष्ट रूप से ईश्वर के लोगों और मसीहा यीशु मसीह के बीच घनिष्ठता, अंतरंगता और घनिष्ठ संबंध और संवाद का प्रतीक है। इस अनुभाग को समाप्त करने के लिए 2 अंतिम बातें। नोट श्लोक 9 लिखने का आदेश। एक समान आदेश पूरे प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। यह आपको रहस्योद्धाटन में कई बार मिलता है। जॉन को लिखने का आदेश दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह वास्तव में वैसा ही लिख रहा है जैसा वह इन चीजों को देखता है, या बाद में इन चीजों को देखने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वह उन्हें लिखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला क्या है, लिखने का आदेश जॉन जो देखता है और जॉन जो सुनता है उसके महत्व की पुष्टि करने का एक तरीका है। और फिर अंत में कविता 10 में हमें वह दिलचस्प दृश्य मिलता है जहां जॉन झुकने और उस देवदूत की पूजा करने के लिए प्रलोभित होता है जिसने उसे बेबीलोन के विनाश के इस दूरदर्शी दौरे पर ले जाया था। और जो दिलचस्प है वह देवदूत की प्रतिक्रिया है, मेरी पूजा मत करो, मैं तो केवल सेवक हूं, अत भगवान की पूजा करो। आप इस दृश्य को 2 बार घटित होता हुआ पाते हैं, यह अध्याय 22 में फिर से घटित होगा। और हमने इसका महत्व देखा है कि अध्याय 5 के संदर्भ में जहां भगवान के साथ मेने की पूजा की जाती है, वह ऐसे वातावरण का खंडन कैसे नहीं कर सकता जो विशेष रूप से एकेश्वरवादी है। देवदूत कहता है, चाहे कोई कितना ही महान देवदूत हो, देवदूत फिर भी कहता है, मेरी पूजा मत करो। इसलिए भले ही कोई कितना भी ऊंचा स्वर्गदूत क्यों न हो, केवल ईश्वर के अलावा और कुछ भी पूजा के योग्य नहीं है, जो एक सख्त एकेश्वरवाद को जन्म देता है। केवल एक ही ईश्वर है जो पूजा के योग्य है। किसी भी चीज की पूजा करना, चाहे वह कितना भी ऊंचा स्वर्गदूत क्यों न हो, किसी और चीज की पूजा करना मूर्ति पूजा है। लेकिन इस तरह के बयानों के संदर्भ में आपके पास अध्याय 5 जैसा दृश्य कैसे हो सकता है जहां मेने की पूजा उसी भाषा और उसी पूजा के साथ की जाती है जैसे अध्याय 4 में भगवान की थी, और अंत में वह उसी सिंहासन पर बैठ जाता है, जब तक कि ऐसा न हो क्या किसी तरह मेमना यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, ताकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पीछे अभी भी मौजूद एकेश्वरवाद का उल्लंघन किए बिना मेमने की पूजा की जा सके। तो अब यह हमें अध्याय 19 श्लोक 11 से 21 में एक अंतिम युद्ध दृश्य के लिए तैयार करता है। हमारे अधिनियम अनुभाग में हम उन छंदों को देखेंगे और थोड़ा समग्र रूप से देखेंगे कि इस युद्ध दृश्य का कार्य क्या है, लेकिन अधिक विस्तार से अध्याय 19 छंद 11 से लेकर अंतिम युद्ध दृश्य की कुछ विशेषताओं को देखें। 21 यह रहस्योद्धाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 24 प्रकाशित वाक्य अध्याय 18:09 से 19:10 बेबीलोन के पतन पर विलाप और खुशी है।